नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वातावरण में तनाव बढ़ गया है, तापमान तो बढ़ ही गया है, कब किसके घर के सामने बुलडोजर आ जाए इसका चांस भी बढ़ गया है। पहाड़ों, नदियों और मैदानों से पूछिए, इन्हीं बुलडोजरों ने कितने पत्थर काट डाले, रेतों का ढेर निकाल लिया और मैदानों से मिट्टियां गायब कर दी। ये बुलडोजर विकास का कनगोजर है, उसके कान में घुस जाता है तो धरती से लेकर पहाड़ तक को फाड़ देता है। वैध से ज्यादा अवैध धंधे में लगे बुलडोजरों को इन दिनों नायक बनाया जा रहा है, न्यायपालिका बनाया जा रहा है। अपनी लल्ली और लल्ला को बर्थडे गिफ्ट में बुलडोजर ही दीजिए। कारें, तलवारें और बोर्ड गेम से बच्चे बोर हो चुके हैं। लल्ली और लल्ला में शक्ति का संचार होगा। गलती से ठेकेदार बन गए तो शक्ति का अवैध विस्तार होगा। गलती से सरकार बन गए तो अवैध का वैध में विस्तार हो जाएगा। आप लोग भी स्मार्ट हैं, समय रहते हो गए बुलडोजर के साथ हैं। बुलडोजर से खेलते खेलते लल्ली और लल्ला खुद को समझेंगे मोदी और योगी। आप बड़े बूढ़े रोगी से हो जाएंगे निरोगी। किसी के घर गिराने पर आप रो नहीं सके, एक चांस अब भी बचा है, सोचा आपको हंसा दूं किसी के घर गिरने पर। इंसान के भीतर जानवर होने ही चाहिए, वरना जंगलों के नाश हो जाने के बाद जानवर कहां बचेंगे, कहां रहेंगे। उसी तरह हर बच्चे के हाथ में एक बुलडोजर होना चाहिए और इस कविता का जाप घर घर होना चाहिए। उन सभी को सबक सिखाना है कि घर घर बुलडोजर चलवाना है। क्रूरता के इस दौर में हास्य भी क्रूर हो चला है। पुलिस से पिटने वाले लोग उसी जिले में मिल जा रहे हैं जिनके बारे में पुलिस कहती है। यह वीडियो उनकी जानकारी में नहीं है जिसमें कुछ नौजवान लाठियों से पिट रहे हैं। अच्छी बात यह हुई है कि वीडियो भले कहीं और का हो, मार खाने वाले उसी जिले में मिल गए हैं जिसका नाम जिला सहारनपुर है। जो लोग अमीर होते ही भारत छोड़ गए, उन्हें ही इस बात से तकलीफ हो सकती थी कि थाने में पुलिस ऐसे मारती है, इस देश में अपने बच्चों को नहीं रखना है। मगर जब वो चले ही गए तो इस बात को लेकर नाराज नहीं हूं कि यहां रहने वालों में इस बात से किसी को तकलीफ नहीं। कोई पहली बार तो पुलिस थाने में नहीं पिट रही है, यही तो खूबी है। जो कांग्रेस के राज में हुआ वो अब भी हो रहा है। लेकिन मुझे शक है, पिछले 8 साल में जिन 35,000 अमीर भारतीयों ने भारत ही छोड़ दिया, उनके फैसले में ऐसे वीडियो का हाथ जरूर रहा होगा। आज तो एक और नई रिपोर्ट आई है कि इस साल 8,000 अमीर भारतीय मेरे प्यारे भारत को छोड़ देंगे और अमेरिका से लेकर लंदन तक को अपना प्यारा वतन बना लेंगे। लाइव टीवी में मेरी बात समझ नहीं आएगी, कई बार ध्यान से ससर जाती है, इसलिए यूट्यूब में दोबारा देखिएगा। अब खतरा इस बात का भी हो सकता है कि ऐसी पिटाई का वीडियो ही ना बने। तब उससे भी बड़ा खतरा इस बात को लेकर हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्व में मीडिया सलाहकार रहे और मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी फिर इस तरह के वीडियो कैसे ट्वीट करेंगे। शलभ भाई के इस दुर्लभ वीडियो से पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है। जो भी इस वक्त प्राइम टाइम देख रहा है, मेरे साथ 100 बार दोहराते जाएं, वरना जो नहीं दोहराएगा उसके घर बुलडोजर आ जाएगा। यही नहीं, 100 पोस्टकार्ड पर प्राइम टाइम का लिंक लिखकर ट्रेन की हर सीट पर अवश्य छोड़ दीजिए। जो भी इसे पढ़े फिर से 100 पोस्टकार्ड छपवाकर हर सीट पर छोड़ दे। ईश्वर बुलडोजर से रक्षा करेंगे, साथ में फूल प्रूफ पुण्य भी मिलेगा, माता रानी की कृपा भी मिलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र होते तो कहते, रो बहु सब मिली, आ बहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाई। पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर होते तो इस रचना के बाद उनके घर एक बुलडोजर पहुंच जाता और तब भारतेंदु जी अपनी पंक्ति बदल देते और गोदी मीडिया के एंकर से कहते, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी जाई, कौन कहत है कि देखी नहीं जाई, बिल्कुल देखी जाई, अबहु ना देखब तो जीअब कैसे भाई, बुलडोजरवा लौकता उहे में सुदशा लौकता, के कहता कि दुर्दशा ही दुर्दशा लौकता। भारतेंदु जी, ये अमेरिका की तस्वीरें हैं, इसे देखने में कोई दुर्दशा नहीं होगी। 2020 के 1 जून को अमेरिका की पुलिस घुटनों पर बैठ गई। ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस ने हत्या कर दी थी। अमेरिका में प्रचंड आंदोलन छिड़ गया। ब्लैक लाइव्स मैटर्स का बैनर लिए हजारों लोग अमेरिका भर में पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। तब वहां की पुलिस आंदोलन की भावनाओं के समर्थन में घुटनों पर झुक गई। कुछ लोगों ने कहा पुलिस ने अपनी छवि सुधारने का नाटक किया है, लेकिन ऐसे भी देखिए कि उस समाज में पुलिस को छवि सुधारने के लिए घुटनों पर बैठने का नाटक करना पड़ता है। हमारे समाज का स्टैंडर्ड उससे बढ़िया है, एडवांस है। यहां पुलिस लोगों के घुटने तोड़ने लगती है तो पुलिस की छवि पुलिस की बन जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप के रिटायर्ड अंकिलों का पुरुषार्थ राष्ट्र राष्ट्र करने लगता है। दयालु दिल के लोग पुलिस के पक्ष में खड़े होकर तालियां बजाते हैं। सौरभ शुक्ला और अली अब्बास नकवी की यह रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं। जब आपने किसी का घर सरेआम तोड़ा जाना देख लिया और बहुतों को गलत नहीं लगा, तो मुझे यकीन है इस रिपोर्ट को भी आप हंसते खेलते कूदते फांते देख ही लेंगे।
ये वीडियो बीजेपी के विधायक और योगी के खास कहे जाने वाले शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया। कैप्शन दिया रिटर्न गिफ्ट। जब इस वीडियो में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया तो पुलिस साफ मुकर गई। हमें जानकारी मिली कि ये वीडियो सहारनपुर का। हमने सहारनपुर के SSP आकाश तोमर को फोन कर इस वीडियो के बारे में पूछा कि क्या ये वीडियो सहारनपुर का है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये वीडियो सहारनपुर का है ही नहीं।
हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो पुलिस वाले जो पीट रहे हैं, वो सर वीडियो वायरल जो हो रहा है वो सर कहाँ का है? सहारनपुर का है कहीं?
नहीं, सहारनपुर का नहीं है वो, कोई वो नहीं है एविडेंस की सहारनपुर का वीडियो।
अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है सर कि किसी भी पुलिस वालों के खिलाफ कोई FIR हुई हो किसी चीज को लेके?
नहीं नहीं नहीं, कोई सहारनपुर का है ही नहीं वीडियो।
अच्छा, सहारनपुर का है ही नहीं है
जी।
इस वायरल वीडियो में एक युवक पुलिस से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है कि मेरा हाथ टूट गया है, मुझे मत मारो। लेकिन पुलिस वाले का डंडा नहीं रुकता। इस लड़के का नाम है मोहम्मद अली। ये युवक सहारनपुर की पीर गली का रहने वाला है। हमने ये वीडियो मोहम्मद अली की माँ को दिखाया तो वो रो पड़ी। उन्होंने तस्दीक की कि जो इस वीडियो में पिट रहा है वो इनका बेटा मोहम्मद अली है।
इतने मोटे मोटे डबल रोटी से हाथ हो रहा है, तो बहुत ज्यादा रो रहा था। इनके रहा था यहाँ से मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। मैं तो 3 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरा बच्चा हल्का खाना भी नहीं खाता, ना किसी के घर का खाना खाता। वो कह रहा मुमानी मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुमानी मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। अपनी मुमानी के पैरों में पड़ गया कि मुमानी मुझे यहाँ से ले जाओ। और फिर वहां जाके वो बता रही मेरी भाभी कि उनको बता रहा है तुम लोग उग्रवादी हो, तुम खराब लोग हो, तुम ये हो। मतलब जेल वाले भी इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ।
चोट लगी हुई है
जी, हाथों में चोट लगी हुई है और बहुत मोटे मोटे हाथ हो रहे थे, बता रही थी मेरी भाभी, बहुत मोटे मोटे हाथ हो रहे थे उसके।
इस वीडियो में कोने में खड़े होकर सफेद कुर्ते पैजामे में जो युवक पिट रहा है, इसका नाम मोहम्मद सैफ है। ये भी सहारनपुर का रहने वाला है, मेहनत मजदूरी करके घर चलाता है। हम सैफ के घर पहुंचे तो उसकी बहन ने बताया कि उसके भाई को पुलिस ने इतना पीटा है कि वो पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, हाथ सूजे हुए हैं। वीडियो में भी दिख रहा है कि पुलिस वाले के हाथ नहीं रुक रहे।
बहुत बुरा पीट रखा अंकल, ऐसे मोटे मोटे हाथ हो रहे उनके और टांगे भी नीली हो रही, इतना चेता पुलिस वालों ने।
आप मिली उनसे मिलने गई?
हां जी, मैं मिलने गई थी। बोल रहे पानी को भी तरसा रखा, टॉयलेट में भी डग्गो पैर ले जा रहे, मच्छर इतनी मोटी मोटी थाने चले जाओ।
सैफ के बगल में काली शर्ट में पीटे जा रहे युवक का नाम मोहम्मद तारीफ है। ये वीडियो देखकर तारीफ के परिवार के आंसू नहीं रुकते।
बहुत बड़ी तरह मार रखा है, पूरा गुंडा गड़ना पार रखकर ऐसे बुरी तरह मार रखा, ये चीज पूरी खून में लत पत है सर। क्या
खून से लतपत है पैरों का, आपने देखा उन्हें?
कहा था भाई मिली कोई कर रहा अंदर, दवा दारू बिन दे रहे, दवा दारू बिन दे रहे, कोई सर उनको
दवा नहीं दे रहे हैं,
कोई नहीं दे रहा है कुछ। वहाँ पे जब हमारी मिलाई हुई है वही बोल रहे की हम वहाँ से गुजर रहे थे, बाबा साइकिल वाले के पास से हिरासत में लिया है।
सौरभ की रिपोर्ट अभी खत्म नहीं हुई है, कैसे खत्म हो जाएगी? जब पुलिस की यातनाएं खत्म नहीं हुई हैं तो सौरभ की रिपोर्ट कैसे खत्म हो जाएगी? इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में एनआरआई अंकिलों से पूछिएगा। अब तो वे गदगद हैं, इतनी पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है, कोई बोलने रोकने वाला नहीं। अब तो अमेरिका छोड़कर सामान बांधकर भारत आ जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी संवेदनशील प्राणी का दिल दुखा है तो वह संवेदनशील नहीं है, गरीब है। क्योंकि जो संवेदनशील हो सकते थे वे अमीर होने के बाद भारत से बाहर बसने की प्लानिंग में लगे। कितनी गलत बात है कि संवेदनशीलता अब केवल गरीबों के पास बची रहेगी। अमीर अपने साथ लेकर अमेरिका चले जाएंगे। सौरभ की रिपोर्ट का अगला हिस्सा देखिए, जो भारत छोड़कर विदेश नहीं जा सके उनके लिए ये एक्सक्लूसिव है।
वीडियो में हरी रंग की टी शर्ट पहने युवक का नाम राहत अली है, इसको पुलिस की सबसे ज्यादा लाठियां पड़ी है। ये युवक जो जमीन पर बैठकर पुलिस के हाथ जोड़ रहा है, इसका नाम इमरान है, ये भी सहारनपुर का रहने वाला है। इस वीडियो में अपने बच्चों को पिटता हुआ देखकर इनके घर वालों के आंसू नहीं रुक रहे। हम ये वीडियो लेकर फिर सहारनपुर पुलिस के पास पहुंचे। इस बार भी सहारनपुर के SPCT राजेश कुमार ने वीडियो देखकर कहा कि ऐसा वीडियो उनकी जानकारी में नहीं है।
सर ये भी आरोप लग रहा है कि पुलिस ने एक वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं सहारनपुर का है और एक उसमें एक पुलिस वाला लड़कों को बेरहमी से पीट रहा है, वो वीडियो सहारनपुर का बताया जा रहा है।
इस तरह कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं है और कोई पूछे
ये वाला वीडियो
इस तरह से ऐसे देख के हम कुछ नहीं बता सकते। इस तरह से कोई वीडियो हमारे संज्ञान में नहीं है,
वीडियो संज्ञान में नहीं है। इसमें फैज नाम का एक लड़का का पता चला है हमें, इसमें कई और लड़के, इरफान नाम का एक लड़का है, तारीफ नाम का एक लड़का है, बताया जा रहा है कि यही के और पुलिस पीट रही है, वीडियो में दिख रहा है। सर
इस तरह की हमारे पास अभी तक कोई शिकायत किसी ने नहीं दर्ज किया।
पुलिस ने इन युवकों समेत 86 आरोपियों पर दंगा करने, हत्या की कोशिश समेत कुल 15 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सवाल ये है कि क्या पुलिस हिरासत में आरोपियों को पीट सकती है? जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जिसमें हिरासत में पुलिस द्वारा मारपीट को अपराध माना गया है।
पहले 24 घंटे जब पुलिस अपनी हिरासत में किसी व्यक्ति को रखती है तो उनको इंटेरोगेशन करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जरा सा भी शारीरिक हानि, मारना, पीटना, थप्पड़ मारना सिर्फ गलत नहीं, गैर कानूनी है, अपराध है। इसको इंग्लिश में टॉर्चर कहते हैं और पुलिस जब ये हिरासत में करती है तो ये कस्टोडियल टॉर्चर है, जो एक बहुत ही संगीन और गंभीर अपराध है।
आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में मरने वालों की लिस्ट में यूपी नंबर एक पर है।
दोषी हैं या नहीं हैं उसका फैसला कोर्ट करता है, पुलिस नहीं। और कस्टोडियल इंटरोगेशन में मारपीट नहीं की जा सकती और आप देख सकते हैं बेरहमी के साथ इन लड़कों को मारा गया है। और बकायदा बीजेपी के प्रवक्ता ने इस पिटाई का वीडियो वायरल किया और इस पर खुशियां मनाई कि देखो इनकी कैसी पिटाई हो रही है। सवाल ये हमें पुलिस से तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, ये सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए। सहारनपुर में सहयोगी अश्विनी मेहरा, अशोक और अली अब्बास के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
हिरासत में टॉर्चर की खबर इस देश में कहीं से भी आ सकती है। चेन्नई में थाने में एक व्यक्ति की कथित रूप से इतनी पिटाई कर दी गई कि वह मारा गया। 2 महीने के भीतर तमिलनाडु में ऐसी दूसरी घटना है। हैदराबाद में तो आपने देखा ही कि किस तरह वहां की पुलिस ने बलात्कार के कथित आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया और लोगों ने पुलिस के इस काम पर फूल बरसाए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एनकाउंटर फर्जी था। सौरव की रिपोर्ट में जिन युवाओं के घुटने पर पुलिस ने प्रहार किए हैं वो गरीब हैं। इतने पैसे नहीं हैं कि अपने इंसाफ के लिए कपिल सिब्बल को वकील रख लें या हरीश सालवे इनके लिए लंदन से आ जाएं एक रुपया में केस लड़ने। जिस पुलिस वाले ने इनके घुटनों पर मारा है, यहां वहां मारा है, रोने पर और जोर से मारा है, मैं उस पुलिस वाले के बारे में सोच रहा हूं, कुछ और जानना चाहता हूं। इन्हें इस तरह कूटने पीटने के बाद क्या उसे वैसी तृप्ति आई होगी जैसी गर्मी में ठंडा रसगुल्ला खाने के बाद आती है। पुलिस वाला कितनी देर में इनकी चीखों को भूल गया होगा या बच्चों के साथ उस रात खेल नहीं पाया होगा। दरअसल मैं इस कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहता हूं। उसमें अक्षय कुमार को पुलिस का लीड रोल देना चाहता हूं ताकि वो फिल्म बने और पिट जाए। आप हंसे तो नहीं ना, इन लोगों की जिस तरह से पिटाई हुई है उसका यही इंसाफ हो सकता है कि इन्हें पीटने वाले अफसर पर फिल्म बनाई जाए और वो फिल्म पिट जाए। बेहतर है इस दौर में सब कुछ कहानियों की तरह दर्ज हो, जो हो रहा है उसे साहित्य घोषित कर दिया जाए ताकि सब कुछ वास्तविक होते हुए भी काल्पनिक हो जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के चंद्रू और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अनवर, पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, वकील प्रशांत भूषण, चंद्र उदय सिंह, आनंद ग्रोवर, इंदिरा जयसिंह और श्रीराम पंचू ने एक बयान पर दस्तखत किए। बुलडोजर की यह दहाड़ क्या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची होगी? पहुंचती तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 6 पूर्व जजों और दर्जनों वकीलों को बयान जारी नहीं करने पड़ते। यह समय न्यायपालिका के इम्तहान का है यह नहीं लिखना पड़ता। उसे लोगों के अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए, जैसे न्यायपालिका ने प्रथम तालाबंदी के समय पलायन कर रहे मजदूरों और पेगासस मामले में खुद से संज्ञान लिया था, यह भी नहीं लिखना पड़ता। बयान में लिखा गया है कि बिना किसी नोटिस और कारण के मुस्लिम नागरिकों के घर गिराए जा रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल होने की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। जो काम न्यायालय का है वो काम पुलिस और विकास प्राधिकरण मिलकर कर रहे हैं। ऐसा कर यूपी प्रशासन संविधान का माखौल उड़ा रहा है। घरों का इस तरह से ढहा देना कानून का उल्लंघन है, इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत से गुजारिश की जाती है कि इस मामले को संज्ञान में ले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी गोपाल गौड़ा और जस्टिस ए के गांगुली ने भी इस बयान पर दस्तखत किए हैं। इस पत्र में इस वीडियो का भी जिक्र है कि पुलिस की हिरासत में लाठी से युवाओं को मारा गया। जमियते उलेमा हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि बुलडोजर को लेकर एक निर्देश जारी करें, इस पर लगाम लगाएं।
मैं धन्यवाद करूंगा अपने योगी आदित्यनाथ जी का और उनकी पुलिस का कि तत्काल कार्रवाई करके उन्होंने स्थिति को संभाल लिया, और नहीं तो कानपुर की स्थिति भयावह होती, समूचा विश्व हमारे ऊपर हंसता और फिर योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती। और आज योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है, अगर पत्थर फेंकेंगे तो बुलडोजर जरूर चलेगा।
लोकतंत्र की यही खूबी है, अदालत की कार्यवाही में देरी से निराशा तो होती है लेकिन उम्मीद का आखिरी दरवाजा भी अदालत है। हर तरफ से जब निगाहें थक जाती हैं तब अदालत की तरफ ही उठती है। अदालत आत्मा है, आत्मा की अंतरात्मा है, अंतरात्मा में परमात्मा है और परमात्मा में सांत्वना कि अभी हम हैं। केवल एक इमारत और उसमें आते जाते लोगों से अदालत की कल्पना करने वाले भी नहीं जानते कि अदालत किन चीजों से बनती है। बुलडोजर ने जिस घर को तोड़ा है उस घर से निकले एक एक सामान से कोई चाहे तो अदालत की इमारत बना सकता है। आइए मिलकर गिनते हैं कि अदालत की इमारत के लिए किन किन चीजों की जरूरत हो सकती है। ईंटें, सीमेंट, छड़, रेत, रंग, कीलें, लोहे, दरवाजों के लिए जंगल काट कर लाई गई लकड़ियां, बहुत सारी कुर्सियां, कुर्सियों पर रखे जाने वाले गद्दे, सफेद तौलियां, मेज, मेज पर बिछने वाली चमड़े की चादर, कलमदानी, पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट, स्विच बोर्ड, एयर कंडीशन, पीने का ग्लास, ग्लास शीशे का, ग्लास के नीचे का कोस्टर, ग्लास को ऊपर से ढकने का कोस्टर, पानी रखने का जग, पानी का बोतल, ठंडे पानी और चाय के दूध के लिए फ्रिज, फ्रिज में कुछ पेस्ट्री, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव, चाय बनाने की मशीन, टी बैग, जरूरी कागजात के लिए बहुत सी अलमारियां, टाइपराइटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, फाइलों के कवर, कवर में लगने वाली रस्सियां, पन्ने और पन्नों के दबाने के लिए पेपर वेट, अदालत में टंगने वाली घड़ी, दीवार पर टंगने के लिए कैलेंडर, अदालत के बाहर लगने वाला नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर लगने वाली जालियां, वकीलों के आने जाने के लिए चौड़े चौड़े कॉरिडोर, कॉरिडोर में बिछा गलीचा, खिड़कियों पर लगे पर्दे और ऊपर लगे एग्जॉस्ट फैन, शौचालय, शौचालय में कमोड, बेसिन और बेसिन के ऊपर डेटॉल साबुन, नाम वाम लिखने के लिए कांसे और पीतल के नेम प्लेट और दरवाजे के बाहर कॉल बेल, दरवाजे के नीचे डोर में ठहरिए, एक चीज रह गई है वो हथौड़ा जिसके ठोकने से आवाज आती है ऑर्डर ऑर्डर, एक कटघरा भी तो चाहिए जिसमें हम आप सब खड़े हैं, हमारा समय खड़ा है, कुछ चीजें छूट गई हों तो हर वो चीज इस मलबे से निकल सकती है जिससे जोड़कर एक अदालत बनाई जा सकती है, एक संसद बनाई जा सकती है, एक न्यूज चैनल का हेडक्वार्टर बनाया जा सकता है। अगर हताशा में कोई भी कहता है कि चुप्पी से लगता है अदालत नहीं है तो वह गलत, अदालत है, अगर अन्याय है तो अदालत भी है, जब तक मलबे से ये सारे सामान निकलते रहेंगे अदालत होने की कल्पना बाकी रहेगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप योर ऑनर से पूछ लें, उनका भी जवाब मिलेगा कि अदालत है और इसने सही कहा।
ये भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर को संविधान और कानून ही रोकेगा, और जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर में पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? कि जिन पर आरोप है उनके नाम पे घर ही नहीं था, उनकी पत्नी के नाम पर था। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी?
तभी तो सवाल है कि जब अदालत है तो उसकी प्रक्रिया और संवेदना का इंतजार क्यों नहीं है, क्यों उससे पहले किसी का घर इस तरह से ढहा दिया जाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में सरकारों के फेल करने का रिकॉर्ड भी पुलिस की यातना के क्रूर किस्सों की तरह सार्वभौमिक हर जगह है। शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी कर देने वालों को क्या जेल में डाला जाएगा? फिर शरद पवार इस बात की आलोचना कैसे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लिखने पर कई लोगों को जेल में डाल दिया जाता है? महाराष्ट्र के निखिल भामरे और अभिनेत्री केतकी चितले ने अगर लिख ही दिया तो क्या हो गया, बुरा लिखा तो उसे बुरा बोलकर नजरअंदाज कर देना चाहिए था। अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।
ये 22 साल के निखिल भामरे हैं, एक महीने से जेल में बंद है। पुलिस के हिसाब से कसूर ये है कि भद्दे बयान ट्वीट पर लिखे एनसीपी के शरद पवार के खिलाफ। पुलिस एक शहर से दूसरे शहर लेकर गिरफ्तारी दिखा रही है। निखिल के खिलाफ कुल 6 एफआईआर दर्ज है। किसान का बेटा नासिक में ग्रेजुएशन कर रहा था तभी उसकी पहली गिरफ्तारी हुई। मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की साख बच जाएगी अगर वो निखिल की जमानत का विरोध न करे तो।
हाईकोर्ट कल सुनवाई में है। जब उन्होंने ट्वीट देखा तो कहा, यहाँ किसी का नाम भी नहीं, आप इस तरह का रोना क्यों रो रहे हैं? और ये भी बोला कि एक विशाल व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की बात करने पर उसकी छवि खराब हो सकती है।
कोर्ट ने सरकार से सवाल करते हुए ये भी बात कही कि अगर आप ऐसे ही कार्रवाई करते रहे तो आप उस शख्सियत को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिसके खिलाफ टिप्पणी की गई है। हर दिन सैकड़ों हजारों लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं तो क्या आप सबके खिलाफ ऐसा ही करेंगे? जो धाराएं निखिल के खिलाफ लगाई गई हैं उनमें शरद पवार के खिलाफ आपराधिक धमकी और अशांति फैलाने जैसे आरोप भी हैं। निखिल ने शरद पवार का नाम लिए बगैर ट्वीट किया था, बारामती के गांधी का वक्त आ गया है, बारामती के नाथूराम गोडसे को पैदा करने का समय आ चुका है। निखिल संघ परिवार से जुड़ा है और अरसे से उनके साथ काम कर रहा है।
पोस्ट विच रीड्स टू सम गांधी,
जो कुछ पोस्ट गांधी बारामती जिले और कुछ नाथूराम गोडसे से संबंधित है बरी नहीं किया जा सकता है और इस तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह जानबूझकर किसी व्यक्ति या राजनेता से संबंधित है जिसे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। बेंच ने यह व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुश नहीं होगा।
एक महीने से ज्यादा जेल में मराठी कलाकार केतकी चितले भी हैं। इत्तेफाकन केतकी और निखिल दोनों एक ही दिन गिरफ्तार किए गए थे। केतकी चितले के खिलाफ राज्य में 14 से ज्यादा एफआईआर हैं, जिनमें कुछ संगीन मसले भी हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखना। लेकिन केतकी का हाल निखिल से भी बुरा है। क्योंकि उनके खिलाफ मामले अधिक हैं। केतकी पर शाही भी फेंकी गई और मोर्चे निकालकर बुरा भला भी कहा गया। महाराष्ट्र में पुलिस की कार्रवाई बीजेपी समर्थकों पर भी इसी तरीके से की गई है।
बोलने और लिखने में मर्यादा होनी चाहिए। भद्दी और अपमानजनक बातें किसी के चाहने वाले को बेहद बुरी लग सकती हैं। लेकिन एक राज्य एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों को या बहुत सारे व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं भेज सकता है क्योंकि वो अप्रिय या अपमानजनक या भद्दी बातें लिखते हैं, और वो भी एक एक महीने के लिए जेल में। दरअसल बोलने की आजादी और लिखने की आजादी लोग अपने अपने चश्मों से देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई बेहद मुश्किल होती जा रही है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह का कहना है कि धर्म की बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं की जा सकती। बात तो सही है, लेकिन जब सारा देश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इन दिनों इतिहास का ज्ञान ले रहा है तो धर्म के ज्ञान पर कैसे रोक लगेगी। बात रोक की नहीं है, नफरत और उकसाने के मकसद से किए गए धार्मिक पोस्ट की है, जिसे लेकर कई गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोगों की पहचान हो रही है।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है।
ये गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह हैं, जो हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं के सामने ये मान रहे हैं कि व्हाट्सएप पर चल रही झूठी धार्मिक बातें पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी साबित हो रही हैं।
तमाम ऐसे धर्म की बातें जो सफलता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अर्जित नहीं की जा सकती, वो किसी गुरु के सम्मुख बैठ के किसी गुरु के साथ बैठ के इसी की जा सकती है, वो आज मैंने यहां सीखी।
लेकिन ये सोशल मीडिया के नफरती हैं कौन, इसके लिए आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद। इनसे मिलिए, ये गाजियाबाद में हिंदुओं के स्वयंभू रक्षक दल के मुखिया पिंकी चौधरी हैं। इनके पास 50 से 60 युवाओं की फौज है, जिसके जरिए ये जेएनयू में मारपीट करने से लेकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने तक का काम कथित तौर पर करते हैं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद इनके खास सहयोगी अन्नू चौधरी को हेट स्पीच देने के मामले में जेल भेज दिया गया। अब ये उसका विरोध करने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी ये बाज नहीं आ रहे हैं।
तो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट
नुपुर शर्मा के समर्थन में उसने जो है पोस्ट डाली थी। हाँ। और ऐसी पोस्टें करोड़ों डली हुई हैं, तो क्या प्रशासन शासन करोड़ों को जेल में डाल देगा तो हम भी जेल में जाने के?
तो इससे समाज में क्या वो नहीं फैलेगी, नफरत नहीं फैलेगी? आपने
मैं नफरत फैलानी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नफरत फैले, इस्लाम की सच्चाई सबके सामने आए, मैं चाहता हूँ ये।
जय श्री राम,
जय श्री राम।
हिंदू रक्षक दल के नाम से सोशल मीडिया पर पिंकी चौधरी कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते आए हैं। यहीं से करीब 20 किलोमीटर दूर ट्रॉनिका सिटी में कबाड़ का काम करने वाले फुरकान कबाड़ी नाम के एक नौजवान टिकटॉकर को भी जेल भेजा गया है, जो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दे रहा था।
नुपुर शर्मा, तू कब तक छुपकर बैठी रहेगी, कब तक बचा लेंगे तुझे?
नुपुर शर्मा के बयान के बाद गाजियाबाद पुलिस ने बीते 4 दिनों में 32 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद किया है, जबकि अन्नू चौधरी और फुरकान कबाड़ी जैसे 13 नफरतियों को जेल भेजा है।
32 अकाउंट का हमने बंद कराया और साथ साथ 13 अकाउंट को ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया, इस पर कई लोग हमने इन्वेस्टिगेशन करके जेल भी भेजा है। ये लगातार हमारा सोशल मीडिया सेल जनपद गाजियाबाद के सोशल मीडिया से लगातार मॉनिटरिंग करती है, जो भी कंटेंट है, जो शांति व्यवस्था का बंद करने वाला जो भी कंटेंट है उसके खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करते हैं।
फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों की सख्ती से खोजबीन कर रही है।
पुलिस पहले अपराधियों से लाठी डंडे और हथियारों से निपटती थी, लेकिन अब नफरतियों के नाम से एक नया अपराधियों का गैंग सक्रिय है, जो समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा है। पुलिस को जहां इन नफरतियों से एक नए तौर तरीकों से निपटने की जरूरत है, वहीं हमें और आपको भी सतर्क रहना होगा। गाजियाबाद से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
ईडी ने दूसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ की, कांग्रेस ने दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां दी, गोदी मीडिया और हाफ गोदी मीडिया सवाल करने लगा है कि प्रदर्शन महंगाई पर करना चाहिए था। जब महंगाई पर प्रदर्शन हुआ तो कवर नहीं किया गया। जब ईडी को लेकर प्रदर्शन होता है तब झट से संपादकीय आ जाता है कि ईडी को लेकर प्रदर्शन हुआ। उम्मीद है मीडिया ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर संपादकीय लिखेगा, बैनर हेडलाइन लगाएगा और गोदी मीडिया डिबेट करेगा। क्या आप जानते हैं कि एक पार्टी को 3 साल में 6,000 करोड़ से अधिक का चंदा देने वाले कौन लोग हैं? आप कभी नहीं जान पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप ब्रेक नहीं ले सकते, ब्रेक ले लीजिए। ओडिशा के खास पर्व के बारे में बता रहे हैं सुशील महापात्रा।
भारत जैसे देश में हर त्योहार बड़ा होता है, लेकिन बड़े त्योहार के लिस्ट हमने छोटी कर दी है। मैं ओडिशा का हूं तो वहां का एक पर्व के बारे में बताना चाहता हूं। 3 दिनों तक चलने वाला ये पर्व आज ही शुरू हुआ है, इसे रज पर्व कहते हैं। हर साल जून 14, 15, 16 को ये पर्व मनाया जाता है। पारंपरिक कथाओं के अनुसार माँ वसुधा 3 दिनों तक मासिक धर्म का पालन करती है, इसलिए इस दौरान किसान हल नहीं चलाते हैं, खेत में नहीं जाते हैं, वसुधा का ख्याल रखा जाता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट मासिक धर्म का अवकाश नहीं देते हैं, लेकिन किसानों ने धरती माँ को 3 दिन की छुट्टी दे रखी है। इस दौरान घरों में भी लड़कियां काम नहीं करती है, उन्हें नए कपड़े मिलते हैं, झूला झूलती है, पैरों में आलता, सिर में चंदन का तिलक लगाती है, घर घर जाकर पान देती है, घरों में पीठा भी बनता है। ओडिशा में पोड़ पीठा पहला दिन बनता है। इस पीठा को बनने में 1 दिन लग जाता है। नारियल, काजू, सूजी, चावल, गुड़, बादाम मिलाकर पीठा बनाया जाता है। इसे केला के पत्र में ढक दिया जाता है, तब लकड़ी के आंच में रात भर रखा जाता है। सुबह लोगों को पीठा बांटा जाता है। इस दौरान घरों में मटन भी बनता है। रज पर्व के दौरान गांव आने की भी परंपरा है। जैसे कि हर ऐसे लोक पर्वों के साथ होता है, रज पर्व के साथ भी ऐसा हुआ है। पलायन के कारण लोग गांव से दूर हो गए हैं, तो त्योहार में से दूर हो गए हैं। हमने सोचा कि आपके जरिए उड़ीसा वालों को रज पर्व का बधाई दे दूं। जिस टीवी में केवल होली और दिवाली मनती है, उस टीवी पर रज पर्व मना लो। तेनु आपन माने भल रे खुशी रे रज पर्व पालन करंतु।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।